आकाशवाणी गोरखपुर से क्षेत्रीय समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ लखनऊ में 19 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित नौसेना शौर्य संग्रहालय के दूसरे चरण नौसेना शौर्य वाटिका का लोकार्पण किया। इस अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि ये वाटिका कोई साधारण पार्क नहीं बल्कि सभी के लिए प्रेरणा स्थल है।
आने वाले समय में नौसेना शौर्य वाटिका लखनऊ के लिए एक प्रेरणा स्थल तो बनेगा ही बल्कि एक टूरिस्ट हब के रूप में यह बनेगा और यह लखनऊ की पहचान बनेगा, यह मेरा पक्का विश्वास है। यह सारी चीजें मैं मानता हूं बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश की तस्वीर है जो हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है।
रक्षा मंत्री ने उत्तर प्रदेश में मजबूत कानून व्यवस्था, विकास और निवेश की सराहना करते हुए इसका श्रेय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व को दिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी नागरिकों का आह्वान किया कि वे सैनिकों को सदैव सम्मान दें। मुख्यमंत्री ने कहा,
जब भारत का सैनिक माइनस डिग्री टेम्परेचर में देश की सीमाओं की रक्षा करता है या रेगिस्तान में झुलसती हुई इस गर्मी में भारत की सीमा की रक्षा करता है या समुद्र की उन लहरों का मुकाबला करते हुए भारत की समुद्री सीमा की रक्षा करता है, तब 140 करोड़ भारतवासी चैन की नींद सोता है।
नौसेना शौर्य वाटिका के लोकार्पण समारोह को दोनों उप मुख्यमंत्रियों केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर नौसेना अध्यक्ष एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह, राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा, ब्रजलाल और लखनऊ की महापौर सुषमा खरकवाल सहित कई जनप्रतिनिधि और नौसेना के अधिकारी मौजूद रहे। लखनऊ की सीजी सिटी में विकसित की गई नौसेना शौर्य वाटिका में स्थापित रिटायर्ड युद्धपोत INS गोमती पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षण है। साथ ही यहाँ प्रदर्शित सभी हथियार वास्तविक है। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को 30 दिन का LPG भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि सरकार रणनीतिक भंडारों के माध्यम से ईंधन सुरक्षा मजबूत करने और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है। उधर पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक ओपेश कुमार शर्मा ने बताया है कि 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चे तेल के साथ वाणिज्यिक पोत निसोस केरोस होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित निकल गया है। BEd संयुक्त प्रवेश परीक्षा कल दो पालियों में आयोजित होगी। पहली पाली सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर बाद 2 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी। परीक्षा के लिए प्रदेश के 72 जिलों में 1,011 केंद्र बनाए गए हैं जहां करीब 4.5 लाख अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा और निगरानी के विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। BEd संयुक्त प्रवेश परीक्षा का आयोजन करने वाले बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मुकेश पांडे के अनुसार परीक्षा को पूरी शुचिता और पारदर्शिता के साथ संपन्न कराने के लिए हाईटेक कमांड कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है। वर्ष 1826 में आज ही के दिन हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदन मारतंड प्रकाशित हुआ था। एक रिपोर्ट।
200 वर्ष पूर्व जब देश गुलामी के जंजीरों में जकड़ा हुआ था तब हिंदी में समाचार पत्र निकालना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था। इस चुनौती को स्वीकार करते हुए पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने कोलकाता के बड़ा बाजार इलाके में उदंत मारतंड समाचार पत्र के माध्यम से हिंदी पत्रकारिता की नींव रखी थी। उदंत मारतंड से शुरू हुआ पत्रकारिता का यह सफर आगे चलकर स्वतंत्रता आंदोलन का महत्वपूर्ण औजार बना। बदलाव के दौर से गुजरती हुई हिंदी पत्रकारिता समाचार पत्रों के साथ ही रेडियो, टेलीविजन, डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए जनमानस के बीच मजबूत पहचान बना चुकी है। समाचार कक्ष से रितेश।
हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर आज प्रदेश के विभिन्न जिलों में पत्रकार संगठनों की तरफ से गोष्ठियों का आयोजन कर पत्रकारिता के इतिहास, वर्तमान और भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा की गई। प्रदेश में बीते 2 दिनों के दौरान तेज हवाओं के चलने और बारिश होने से तापमान में 10 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की गई है। आज भी कई जिलों में बादल छाए रहे, कुछ जिलों में हल्की बारिश भी हुई। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों में कल तेज हवाओं के बीच बारिश होने का अलर्ट जारी किया। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।